पंखा बंद
कर,
लेकिन मच्छर आए वो जो है ना,
नहीं
मच्छर आए बिंडे फल पर्दा लगाए, आवाज सुन सुन के आती रही।
महाज्योति को याद करो हे योगी,
बड़े प्यार
से। सभी ब्राह्मण आत्माएं योगी आत्माएं। बाबा ने कहा जो विकार संसार की आत्माओं के लिए क्या है, जहरीले सांप, वो ब्राह्मण आत्माओं के लिए क्या है, गले का हार है। जहरीले सांप वो ब्राह्मण आत्माओं के लिए गले का हार है। और क्या है ब्राह्मण आत्माओं के लिए सांप, नाचने का, नाचने का स्टेज,
स्टेज है। तीन चीजें बताई,
सोने में आराम करना
और शेष शैया, शांताकारम भुगज पूजक शयनम। विष्णु किसका यादगार है, हमारा यादगार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम सदावसंतम विधयारविंद। तो शंकर भी हमारा यादगार, विष्णु भी हमारा यादगार, और कृष्ण शेष कालिया पर नाच करता हुआ भी हमारा यादगार। तो नाग बाबा ने कहा है विकार, और हमारे लिए है वो गले का हार, वश में कर रखा है विकार को। तो हम तपस्वी आत्माएं हैं, और ब्राह्मणों की स्टेज की निशानी सारे वरदान पूरे करते हुए।
अच्छा,
ब्राह्मणों की स्टेज की निशानी है कमल
आसन।
तो कमल जल में है परंतु जल से अछूता है। तो बाबा ने उसी वरदान में कहा था तुम्हारी नेचुरल देही अभिमानी स्थिति हो, स्वतः देही अभिमानी स्थिति हो। तो कमल आसन हमारा प्रतीक, हमारी निशानी, सांप हमारी निशानी। फिर एक वरदान था राज ऋषि, राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज और दूसरी तरफ वैराग्य। संकल्प मात्र भी यदि लगाव है तो राज ऋषि नहीं, संकल्प मात्र यदि लगाव है तो एक पाव
इधर
एक पाव इधर एक पाव दूसरी नहीं, ना इधर के ना उधर के। तो राज ऋषि अर्थात संकल्प मात्र भी लगाव से मुक्त, न स्वयं में न वैभव में न व्यक्ति में किसी में भी लगाव नहीं, ऐसी राज ऋषि की स्थिति है। उसी मुरली में बाबा ने मुरली चलाई थी किसके ऊपर, लालच के ऊपर,
हवज।
क्या बोला था राजू भाई लालच के बारे में,
इकट्ठा नहीं करना चाहिए,
इकट्ठा नहीं करना चाहिए, संग्रह वृत्ति उसको कहते हैं परिग्रह,
परिग्रह।
और उसके विरोध में है अपरिग्रह। जैन धर्म के पांच महाव्रतों में एक व्रत है अपरिग्रह। परिग्रह अर्थात संग्रह करना। जैन धर्म में पांच महाव्रत है, सबसे पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है ब्रह्मचर्य, चौथा है अचौर्य, चोरी नहीं करना या अस्थेय, और पांचवा है अपरिग्रह। जो साधु होगा, जो योगी होगा, जो तपस्वी होगा, वो कोई भी चीज संग्रह नहीं करेगा, इकट्ठा नहीं करेगा, दस बीस साड़ी नहीं रखेगा, बाप की बाप
चप्पल नहीं देगा,
अखंड बाप के खजाने भरपूर है, यहाँ से तुमको मिलता रहेगा, तुमको और कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ भी संग्रह अगर किया तो उसमें मोह होगा, संग्रह वृत्ति हानिकारक वृत्ति है। जो जितना है उतना ठीक है, जितना आवश्यकता है, आवश्यकता से ज्यादा ये आ सकती है, उसमें विकार उत्पन्न हो सकते हैं, मोह उत्पन्न होगा, उसके लिए भय उत्पन्न होगा। धन जो है अंत समय बाबा ने कहा, स्त्री ने क्या कहा, लाठी भी छोड़ो। स्त्री ने कहा लाठी भी छोड़ो, कुछ भी याद ना आए, अंतकाल जो याद आएगा उसी आधार से दूसरा जन्म होता है, ये तो शास्त्रों की भी बातें है। इसके लिए वो लोग क्या कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। पर अंतकाल में मनुष्य को वही याद आता है जो उसने सारे जीवन भर चिंतन किया है, अचानक किसी को कह दो कि अभी परमात्मा को याद करो, संभव नहीं है। इसके लिए बाबा कहते हैं लंबे समय का अभ्यास, बहुत समय का अभ्यास चाहिए तो कहीं जाकर बाप की याद रहेगी, दिल की तार बाप से याद की तार जुटी रहेगी, नहीं तो नहीं।
बैटरी चार्ज
तो वो लंबे समय का अभ्यास चाहिए, एक दो साल का नहीं, कई सालों, बहुत लंबे साल का। दिल शिकस्त हो जाएंगे, पश्चाताप करेंगे, पद कम हो जाएंगे, सजा खानी पड़ेगी, आंसू बहाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस करेंगे,
लेकिन
और सबसे बड़ी सजा संगम युग पर, एक तो दूसरी सजा, एक तो वो, एक दूसरी जो सजा है वो है श्रीमत का कोई उल्लंघन करता है तो उसकी सजा उसको तुरंत मिलती है, वो कौन सी है,
खुशी
गायब। एक अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, स्थिति का गिर जाना ही दंड है, और कोई दंड नहीं है, स्थिति का गिर जाना ही दंड है,
खुशी गायब हो जाना,
खुशी गायब। ब्राह्मण जीवन पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता है, दुखी हो जाएंगे, ब्राह्मण जीवन में ही दुखी, यही दंड है। श्रीमत जो 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 दी हुई है ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे, मुरली का चिंतन निरंतर होता रहे, ये श्रीमत है। इसका भी अगर उल्लंघन किया तो सिटी डाउन। आज की मुरली चार भाग है, इसमें एक वक्त की पुकार, दूसरा दादियों से मुलाकात, तीसरा मधुबन निवासियों से मुलाकात और चौथा एक दूसरी मुरली मधुबन निवासियों से मुलाकात।
तीन प्रकार की सेवा बैठा बैठा
बाप कब से सुना रहा है, क्या क्या सुना, कब तक सी सुनाएगा,
अभी सुनाने
कब तक सुनाएगा, जो तीर भरे भरे हैं वो छोड़े हैं। मुरली सुनी, साकार मुरली सुनी, रिवाइज कोर्स की मुरली सुनी, अब कब तक बाप सुनाएगा, कब तक सुनते रहोगे, बाबा ने पूछा। जितने तीर भरे हैं उतने छोड़े हैं। बाबा से बच्चिया कहती है बाबा सेवा नहीं है यहाँ पर, बाप कहते हैं क्या जंगल में शिकार ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जितने तीर भरे हैं, तीर किस लिए होते हैं, शिकार करने के लिए, तो जितने तीर भरे हैं उतने छोड़े हैं। कितना सुंदर प्रश्न है। फिर मधुबन निवासियों से क्या कहा,
बैठे बैठे
सेवा का बहुत सारे साधन है। बाबा ने कहा तीन सेवाएं हैं, फिर तीन को छोड़ दिया और विशेष सेवा पे आ गए। तीन कहीं और सुनाएंगे शायद। अनुभव के आधार पर चरित्र सुनाओ, जैसे भागवत सुनने में इंटरेस्ट ज्यादा है, क्यों, क्योंकि कथा है, कहानी है, कृष्ण का चरित्र है उसमें। पर गीता सुनने के, गीता प्रवचन कहाँ सुने आपने, सुने बहुत कम है। छोटी सी जगह में बैठ के लोग गीता का प्रवचन सुनते हैं, चिन्मय मिशन ऐसे दो तीन जो है गीता पाठशालाएं हैं, वहां पर गीता के प्रवचन सुनते हैं। पर जो भागवत होता है वो कहाँ होता है, बहुत सभा होती है, बहुत बड़ी सभा होती है भागवत की, बहुत बड़ा पंडाल होता है, बहुत बड़ा पंडाल जिसमें कितने लोग रहते हैं पता नहीं। क्योंकि कथा में तो आनंद है, सब कथामृतम। गोपिया क्या कह रही है कि हे गोविंद तेरी कथा अमृत के समान है, तप्त जीवनम, हमारा जीवन तप रहा है, ऐसे तपते जीवन में तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरडितम। कवियों ने जिसका गायन किया है कलमश आपहम, हमारे जीवन में जो कलमश है, कलंक है, उसको धोने वाली ये कथा है। इसके लिए भागवत का बहुत ज्यादा आकर्षण है, भागवत में भावनाएं हैं, कृष्ण का चरित्र है उसमें, और ऐसा ऐसा चरित्र है कि जो सुन के लोगों के आंखों से आंसू आ जाते हैं। और गीता में क्या है, गीता में सुन के आंसू नहीं आते, गीता में तो बुद्धि लगानी होती है, समझना है आत्मा क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इतनी कठिन कठिन भाषा है, कर्म क्या है, योग क्या है, कर्तव्य क्या है, संसार क्या है, कठिन है वो समझने में। कथा समझना आसान है। तो बाबा ने कहा जैसे गीता सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं है,
भागवत सुनने में इंटरेस्ट,
भागवत सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है, वैसे ही तुम यहाँ की सेवा का साधन कौन सा है मधुबन निवासियों के पास, ये भूमि चरित्र, चरित्र सुनाओ, वरदान भूमि है, चरित्र भूमि, उनको अनुभव करके सुनाओ। कैसे सुनाओ वो भी बहुत सुंदर बात बताए, जैसे जैसे क्या, जैसे ताजमहल, ताजमहल के गाइड कैसे सुनाते हैं,
बड़े रुचि से,
बड़े रोमा रमणीक ढंग से ताजमहल की हिस्ट्री सुनाते हैं। तो तुम चरित्र, चरित्र सुनाओ, इस भूमि का चरित्र सुनाओ, इस भूमि का महत्व सुनाओ। कैसे सुनाओ, रमणीक ढंग से, कैसे सुनाओ, खुशी खुशी से, कैसे सुनाओ, उमंग से, कैसे सुनाओ, उत्साह से,
प्यार से,
कैसे सुनाओ, सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है, नहीं सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है, कैसे सुनाओ, एक तो उमंग से, खुशी से, लगन से, रमणीक ढंग से, और कैसे सुनाओ,
प्यार से,
नहीं बहुत ही सुंदर शब्द है, शायद ही कभी सुना होगा,
अपनेपन से,
अपनेपन से, वो तो सब राइट है, अपनेपन से, चलो और
खुद का
विट्ठल भाई कैसे सुनाओ, मधुबन निवासी मधुबन का पदार्थ कैसे सुनाएंगे?
घर से
आनंद से खुशी से
घर की बात हो,
स्वयं महत्व में स्थित होकर, स्वयं महत्व में स्थित होकर मधुबन का महत्व सुनाओ, खुद ही उसका महत्व नहीं है। जो व्यक्ति जहाँ रहता है लंबा समय तक, उसका महत्व धीरे धीरे कम होता है उसके लिए, वो कॉमन हो जाता है उसके लिए, पर वहां रहते भी उस स्थान से भी थोड़ा उपराम रहना है। उस स्थान से उपराम रहने का अर्थ उस स्थान को कॉमन प्लेस नहीं समझ लेना है, उस स्थान के लिए भावना कम ना हो जाए, उस स्थान में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भावना कम ना हो जाए। जैसे मधुबन मशहूर है वैसे ही मधुबन निवासी भी मशहूर है। तो मधुबन क्या है? चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है, कर्तव्य भूमि है, कर्मातीत भूमि है, यादगार भूमि है, मधुर भूमि है, वरदानी भूमि है, परिवर्तन भूमि है, तपस्या भूमि है, तपस्या कुंड है, और क्या है मधुबन विठल भाई? हाँ, बेहद का धोबी घाट है, बेहद का क्लब है, बेहद का एयरपोर्ट है,
सेवा की खान है,
सेवा की खान है, खुशियों का भंडार है, विश्व का शोक पीस है, हीरे की खान है, और क्या है? लाइट हाउस है, माइट हाउस है, शांति वन है, शांति का वन है मधुबन, ज्ञान का सरोवर है मधुबन, ग्लोबल हॉस्पिटल है मधुबन, विश्व की संसार की आत्माओं का इलाज करने का हॉस्पिटल है मधुबन,
सुख शांति
है, दिलवाड़ा है मधुबन, ज्ञान सरोवर है मधुबन, अचल गढ़ है मधुबन, पांडव भवन है मधुबन, ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर है मधुबन, विश्व सेवा का केंद्र है मधुबन, और क्या है? परमात्मा अवतरण भूमि है, आत्मा परमात्मा के मिलन की भूमि है, मधुर भूमि है, मंगल भूमि है, सबसे बड़ा तीर्थ है, और क्या है? चारों धाम यहाँ पर है, और लाइट हाउस है, माइट हाउस है, और पावर हाउस है, और
यहाँ से उड़ने का स्थान है,
बेहद का एयरपोर्ट है, यहाँ से आत्माएं उड़ती है, और चुंबक है, शीश महल है, जादू की नगरी है, और देवता पद की डिग्री लेने का स्थान है, ब्राह्मणों का किला है, प्रकाश स्तंभ है, शांति स्तंभ है, ज्योति स्तंभ है, और क्या है मधुबन? मधुबन निवासी मधुबन के महत्व में स्थित होकर मधुबन की महिमा सुनाए, तब उनकी सेवा भी होगी और तुमको खुशी भी मिलेगी। तो इसमें सेवा भी है, प्राप्ति भी है, और याद भी है, तीनों एक साथ समाये हुए हैं। मधुबन के महत्व को में स्थित होकर मधुबन की महिमा सुनाओ, और क्या है मधुबन? शिवन भाई, सच्चा सच्चा हरिद्वार है, सच्ची सच्ची गौशाला है, सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी,
इंटरनेट
है, ओम शांति भवन है, ठीक है, और ज्ञान विज्ञान भवन है, रूहानी भारतीय विद्या भवन,
विद्या भवन
वो है, भारतीय विद्या भवन, जहाँ पर सोशल वर्कर,
मुंबई वाला
अंधेरी में जो है, जहाँ पर सोशल वर्कर कुछ डिस्कस करते हैं, ये है रूहानी विद्या भवन। कितना सुंदर बोला, अभी साकार मुरली चली, ये है ज्ञान विज्ञान भवन, ओम शांति भवन, ओम शांति रिट्रीट सेंटर, ये है शांति सरोवर, और क्या है? ज्ञान मान सरोवर, ये है स्वदर्शन भवन, सारे नाम गिनाओ, ये है त्रिमूर्ति भवन, लाइट हाउस, माइट हाउस, कुंज भवन, और क्या है मधुबन? बाल भवन, और क्या है मधुबन? कितने नाम हो गए? 50 साल, राजयोग भवन, स्वदर्शन भवन, और कमल कुंज, इंद्रप्रस्थ, इंद्राश्रम, त्रिमूर्ति, ये है इंद्रप्रस्थ, ये है स्वर्गाश्रम,
ट्रेनिंग सेंटर,
ये है आत्माओं का ट्रेनिंग सेंटर, ये है आखिरी ठप्पा लगाने का स्थान,
स्वर्गाश्रम,
स्वर्गाश्रम आखिरी, ये है स्वर्ग का मॉडल, और क्या है?
साक्षात्कार भूमि।
यह है साक्षात्कार भूमि, यह है
जादू की नगरी,
एरोप्लेन बेहद का एयरपोर्ट, जादू की नगरी। और क्या है माता जी? मधुबन पावर हाउस, वो तो हो गया। और परिवर्तन हो गया, शीश महल हो गया, आत्मा परमात्मा का कुंभ मेला, कुंभ मेला,
त्रिवेणी संगम,
ये त्रिवेणी संगम। और क्या है मधुबन?
बेहद का सागर
मधुबन। बेहद का सागर तो बाप है।
बेहद सागर के अवतरण की भूमि है।
बेहद की भट्टी का स्थान,
बेहद की भट्टी का स्थान। और क्या है मधुबन? वृंदावन। मधुबन, मधुबन भी तो है, मधुबन तो बोला ही नहीं किसी ने नाम।
मधुबन पांडवन बोला था,
मधुबन। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। ये वो भूमि है जहाँ पर जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। ये भूमि का इतना महत्व है। तो कितने नाम हो गए मधुबन के? अरविंद भाई 50 60 108 हो गए।
ये भागवत चल रहा है, भागवत चल रहा है अभी तक।
भागवत कथा, बाबा ने कहा भागवत कथा सुनाओ, गीता नहीं सुनाओ, भागवत सुनाओ तो उनको इंटरेस्ट आएगा। गीता सुनने में इंटरेस्ट कम है, भागवत सुनने में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। सत्यनारायण की कथा, तिजोरी की कथा, अमरनाथ कथा,
कोई एक लकड़ा रहा और वही होता।
वो तो किसी को पता ही नहीं। किसी को पूछो तिजोरी की कथा क्या है, हार्डली किसी को पता है। किसी को पूछो अमर कथा क्या है, किसी को बहुत कम पता है। तिजोरी की कथा है ना, वो पति और पत्नी की, पत्नी होती है, फिर वो कोई अपने पति के लिए व्रत रखती है, फिर कोई उसको तोड़ने में मजबूर, मतलब उसका जो देवर रहता है वो, मतलब ऐसा होता है कि चांद जब दिखेगा तो ही वो खाना खाएगी,
करवा चौथ
हो ना। पर वो उसका देवर करता है कुछ, एक थाली रख देता है वो, उसको जरा ये होता है, तो वो थाली को देखकर उसको लगता है मैंने चांद को देख लिया, तो फिर बाद में पता चलता है ये नहीं, ये तो गलत हुआ। फिर वो तीसरा, मतलब ऐसा कुछ है उसमें, फिर वो कथा करती है, फिर उसका पति की तबीयत खराब हो जाती है, फिर पति ठीक हो जाता है, ऐसे कुछ है इस टाइप की। इस तरह की वो कथा है, ये तो भक्ति मार्ग की। तुमने कथा वार्ता में भी तुम्हारी बुद्धि भटकती थी, बाबा ने उस दिन क्या कहा, कथा वार्ता में भी तुम्हारी बुद्धि भटकती थी, अभी भी बुद्धि भटकती है,
बुद्धि निष्फल ना रहे, बुद्धि योग।
तो अगर बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती है तो सफलता नहीं, बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती है तो टाइम वेस्ट, बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती है तो कमाई नहीं, बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती है तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे, पाप नहीं घटेंगे, याद ही कल्याणकारी है। तो बाबा मधुबन निवासियों को कह रहे हैं, मधुबन के महत्व में स्थित होकर मधुबन की महिमा सुनाओ, रमणीक ढंग से सुनाओ, खुशी खुशी से सुनाओ, उमंग से सुनाओ, लगन से सुनाओ, तो सेवा भी है, याद भी है और प्राप्ति भी।
याद सेवा प्राप्ति,
जैसे तुमको देखकर तुमको रत्न समझते हैं, वैसे उसी रीति उसी दृष्टि से बाप की तरफ आकर्षित हो। जैसे तुमको रत्न देखते हैं उसी दृष्टि से बाप की तरफ आकर्षित हो। फिर कहा इस वर्ष क्या करना है, सेवा और स्व की सेवा,
इसमें
बैलेंस हो। अभी तक तो ये कहते हैं कि अच्छा काम है परंतु चलन ऐसी नहीं है, इसके लिए बाबा ने कहा गुणमूर्त और ज्ञानमूर्त, जो भी देखे क्या अनुभव करे, गुणमूर्त है और ज्ञानमूर्त है। हाँ, बारिश और प्रजा भी इसी आधार से तैयार होगी। तो ज्ञान बहुत ज्यादा परंतु गुण कुछ भी नहीं, तो ये नहीं चाहिए। ज्ञान भी उतना ही, गुण भी उतने ही। जितना ज्ञानी उतने ही निरंकारी, ये योगी की पहचान है। संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण निरंकारिता, ये है योगी की पहचान। तो आगे बाबा ने क्या बोला मधुबन निवासियों को, और भी कुछ बोला है?
यहाँ बैठ कर ही आप प्रजा राजा सब
तैयार कर सकते हो,
यहाँ बैठ कर ही प्रजा राजा तैयार कर सकते हो, स्व सेवा और सेवा का संतुलन बैलेंस हो। और भी एक दो बातें हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद में ये कहा ना बाप का नाम बाला करने का वर्ष है ये। वो कुछ कंपटीशन के बारे में जैसा किया
गीता का भगवान कंपटीशन हुआ था, तो
वो भी ये वर्ष है बाप का नाम बाला करने का वर्ष है। ये भी एक पॉइंट, छोटे छोटे ग्रुप बनाओ और इस तरह से सेवा करो, ये भी और एक पॉइंट है उसके पास। जस्ट थोड़ा नीचे, जैसे ज्ञान ऊंचा सुनाते हैं वैसे चलन भी ऐसी हो, ऐसा चाहिए। ज्ञान तो बहुत ऊंचा है पर चलन ऐसी नहीं है, ऐसे कहते हैं लोग।
लोग ऐसे कहते
हैं। हाँ, राम बाला। तो ये था मधुबन निवासियों से मुलाकात। उसके बाद में लास्ट मुरली छोटी सी है, किस बारे में है? अनिल भाई, अनिल भाई तो उधर बैठे हैं पीछे। मास्टर क्या बोला उसने? दादा अर्थात सेवाधारी, और
रह नहीं सकते वो,
तुम दे बिना
रह नहीं सकते, अखंड महादानी,
अखंड महादानी,
लंगर लगा रहे।
और माता जी क्या बोला दादा के बारे में? बाबा ने किसकी संतान हो?
दाता
के बच्चे, मास्टर दाता हो, जो बाप से लिया है वो अब आत्माओं को देना है,
बांटने से बढ़ेगा।
अविनाशी, विनाशी खजाने जो है वो
कम होते हैं,
बांटने से कम होते हैं, और अविनाशी खजाने मनोज भाई इधर आ जा, विनाशी खजाने बांटने से, विनाशी खजाने कम होते हैं और अविनाशी खजाने बांटने से बढ़ते हैं। तो बाप ने तुमको दिया है तो तुम सबको दो। दाता के बच्चे दान करना है, दान ब्राह्मणों, ब्राह्मण जीवन में देना ही लेना है, ब्राह्मण जीवन में देना ही लेना है। सबसे बड़े दानी कौन है संसार में?
ब्राह्मण।
और शास्त्रों में भी कुछ दानियों का गायन है, जैसे
कर्ण,
कर्ण, कर्ण को उसके गुरु ने कहा कि कर्ण तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए नहीं, जो भी आता है उसको दे दो। इस हाथ से देते हो तो इस हाथ को पता ना चले, इसके लिए देना भी कैसा है? गुप्त। इसके लिए गुप्त दान का भी बहुत ज्यादा, और दान देना भी काफी है, तुरंत
तुरंत।
युधिष्ठिर के पास कोई एक व्यक्ति आया और कुछ मांगने लगा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम कल आना, मैं तुमको कल दूंगा। तो भीम हंसने लगा, क्यों? नहीं, नगाड़ा नहीं बजाया। युधिष्ठिर के पास एक व्यक्ति आया, कुछ मांगा, उसने कहा आज नहीं, तुमको मैं कल दूंगा। इसका मतलब तुमको पता है कल तुम कल तक जीवंत जीवित रहने वाले हो, मतलब तुमने कल तक अपने जीवन पर जीत प्राप्त कर ली। इसके लिए वो हंसने लगा। तो तुरंत दान, अभी दान देना है तुरंत दे दो, पता नहीं बाद में बदल जाए,
ओम शांति हो जाए,
ओम शांति हो जाए। इसके लिए तुरंत दान। तो जैसे बाप निस्वार्थ देता है, निस्वार्थ रूप से देता है, तुम भी निस्वार्थ रूप से। वो तो गुरु दक्षिणा थी, राजा विक्रमादित्य की भी है, उसके दरबार में उसने जो कोषाध्यक्ष था उसके लिए पहले से बता के रखा था कि अगर कोई व्यक्ति आए ज्ञानी, अगर वो 1000 ज्ञान की वार्तालाप करे तो उसे तुरंत राजकोष से एक एक 1000 बात करे तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उसे तुरंत दे दी जाए। ये विक्रमादित्य के लिए कहा जाता है, मतलब दानी। और दानी कौन है जिसको बाबा हमेशा याद करते?
आगा खान।
आगा खान को तो टोला, वो दानी कहाँ से? वो दानी नहीं है। और है एक दानी जिसको बाबा हमेशा याद करते, राजा गोपी चंद्र, नहीं उसको वैराग आ गया, हरिश्चंद्र। वो दान देने के वापस लेने की बात है, सुदामा ने दान नहीं लिया, उसने तो चावल मुट्ठी दिया। हरिश्चंद्र ने वापस लेने की बात है, सुदामा दान, दान त्याग से भी संबंध है। दधीची, हड्डियों का दान दिया,
गाय ने चार छोटे पूरा हड्डी दिया।
तो शास्त्रों में गाय ने दान, हड्डियों का, हड्डी हड्डी दे दो,
जबरदस्त
तो जैसे बाप ने तुमको दिया है तुम सबको दो। क्या क्या दो? अभी सबसे पहला है तो क्यों दो, क्योंकि हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता। फिर कब दो? एक सेकंड भी देने बिना अगर तुम रह नहीं सकते हो, हर सेकंड देते रहो। किसको किसको दो?
चाहे ज्ञानी है,
चाहे ज्ञानी हो, चाहे ब्राह्मण हो। क्या क्या दो?
सब कुछ।
सुख दो, शांति दो,
ज्ञान दो,
शक्ति दो, सहयोग दो,
खुशी दो,
खुशी दो। खुशी के भिखारी क्या तुम्हारे पास आने वाले हैं? लाइन लगने वाली है, भीख मांगने के लिए आने वाले हैं तुम्हारे पास। भविष्यवाणी कर दी है बाबा ने, 78 की मुरली है ना,
78
में भविष्यवाणी कर दी है।
बोला
कौन कौन आएंगे तुम्हारे पास? सुख शांति के भिखारी। और भीख और दान कौन दे सकता है? इसकी भी कैटेगरी, जिसके पास है, जिसके पास है ही नहीं वो क्या देगा? कोई भिखारी अगर कहता है ये 5-star होटल एकदम फालतू है, मुझे तो बिल्कुल इसमें रस नहीं है सोने में वहां पर। कोई भिखारी कहता है ये राज्य बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए, अरे तुम्हारे पास है ही नहीं तुम कहां से दोगे? जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो कैसे किसी भूखे को खिला सकता है? त्याग कौन कर सकते है? जिसके पास है, जो गौतम बुद्ध है, वो कह सकता है कि मैंने अपने राज्य को छोड़ दिया। कोई भिखारी नहीं कह सकता कि मैंने अपना राज्य छोड़ दिया। तुम्हारे पास है ही नहीं, तो जो भरपूर है, संपन्न है, और जो मालामाल है, वही दूसरों को भरपूर, संपन्न और मालामाल बना सकते है। ऐसे संपूर्ण मूर्तियों के आगे भगवान ने क्या शब्द यूज किया है? तुम संपन्न मूर्तियां हो, तुम सबको मालामाल करना है। संपन्न मूर्तियां हैं, संपन्न भी है, भरपूर भी है, मालामाल भी है। किसकी संतान हो? सागर की संतान, मास्टर सागर हो। क्या नहीं हो मनोज भाई? नदी नाले नहीं हो। क्या कहा बाबा ने? तुम नदी नाले नहीं हो, तुम सागर की संतान, मास्टर सागर हो। सागर कितना है तुम्हारे पास? अखूट अखंड महादानी हो तुम। सागर में से 10 बकेट पानी निकालो तो कितना कम होगा? क्या
टैंकर
भर लो, कम होगा? अखूट, अखूट मतलब न फूटने वाले, अखूट अखंड। तो इतना स्वयं में अगर भरेंगे तो ही दूसरों को दे सकेंगे।
यह ना 3-4 लकी जी सुन गई थी तो प्रशासन ने क्या किया, बोला अब इसको टैंकरों से भरेंगे।
अच्छा,
तो इधर दूसरे टैंकर लागे डालने लगे नक्की में भरने के लिए, अभी भरेगी।
तो परमात्मा सागर है, इस सागर से अगर थोड़ा भी निकाल लो तो कुछ नहीं होने वाला है। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा जो है वो संपूर्ण है संजय भाई, इस संपूर्ण में से अगर संपूर्ण को निकाल लिया जाए
तो भी संपूर्ण रहेगा,
तो जो बचेगा वो भी संपूर्ण है। वेद महावाक्य है, सारे उपनिषदों में से सबसे मुख्य उपनिषद ईशोपनिषद यहाँ से शुरुआत होता है कि परमात्मा संपूर्ण है। उस संपूर्ण में से संपूर्ण को निकाल लिया जाए तो जो बचेगा वो भी संपूर्ण ही है। तो तुम अखूट अखंड महादानी हो, तुम्हारे खजाने भरपूर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई आ जाए सुबह सुबह खुशी दो तो हम कहेंगे क्या खुशी तो है पर एक्सपायरी हो गई, स्टॉक नहीं है, माल कम हो गया है, फार्मेसी में सारा ड्रग पूरा चाहिए, एक भी दवाई कम नहीं। जिसको जो चाहिए, और ब्राह्मण आत्माओं को दो प्रकार के दान दो, कौन से? सुख शांति ब्राह्मण आत्माओं को नहीं चाहिए, वो संसार की आत्माओं को चाहिए, जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता है। ब्राह्मणों के पास ज्ञान बहुत है, इसके लिए ब्राह्मणों को ज्ञान देंगे तो तुमको ज्ञान सुना देंगे। इसके लिए ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं सुनाया जाता है, ब्राह्मणों को जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है वो सहयोग दो। और दूसरा दान ब्राह्मणों को
पवित्रता
नहीं, आज का मुरली लास्ट, जहाँ मुरली खत्म हो रही है वो दो बताया ना, ब्राह्मण आत्माओं को दो चीजें दो। ब्राह्मण आत्माओं के पास ज्ञान तो बहुत है, उनको थोड़ी ना
सहयोग तो दे सकते हैं।
नहीं, इन्हें
इस मुरली सहयोग तो दे दिया ना, जिस समय जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उसको वो सहयोग दो, शक्ति दो, ये एक कैसे दो वो भी बोला, मनसा से दो, वृत्ति और वाइब्रेशन से दो, ये फर्स्ट। सेकंड गुणों का दान, कर्मों द्वारा गुणों का दान, सैंपल बनना है, प्रत्यक्ष सैंपल बन उनको, गुणों को जीवन में धारण करने की शक्ति देना, ये दान देना है। मतलब उनको गुण दान बाबा ने कहा है ना, इसको कर्मों द्वारा गुणों का दान करना है, उसका प्रत्यक्ष सैंपल बनना है
के जीवन में गुण मूर्त बन,
गुण मूर्त ज्ञान मूर्त, ऐसा ब्राह्मणों को दान देना, ये दान है ब्राह्मणों के लिए। और क्या बोला यहीं का, सुख शांति के भिखारी तुम्हारे पास आने वाले हैं तो भरपूर रहना चाहिए। और भी कुछ है वहां पर, दान कौन बन सकता है,
जो संपन्न,
जो संपन्न है, जो भरपूर है, जिसके पास है,
जो
रहमदिल। बाबा ने फ्राक दिल और रहमदिल की भी बात कही है, रहमदिल भी बनो फ्राक दिल भी बनो। अभी क्या क्या दान देना है, तो सुख शांति सहयोग खुशी, तुम मास्टर सुखदाता की संतान, मास्टर सुखदाता हो, ये भी बोला है उसी में,
कल्याणकारी
हो, विश्व कल्याणकारी हो। अशांति के समय में उन आत्माओं को शांति का दान दो, भले क्योंकि वो विकारी आत्मा है, वो तो झगड़ेंगे, उनका तो काम ही यही है झगड़ना, परंतु उस समय भी तुम सबको क्या करो, क्योंकि तुम विश्व कल्याणकारी हो, इसको इसके लिए तुमको शांति का दान देना है। इसके लिए अमृत वेला एक प्रयोग है कि पांच ग्रुप इमर्ज करना है। सबसे पहला ग्रुप संसार की सभी दुखी आत्माएं, इन सबको दुखी आत्माओं को सुख की किरणें दो। दूसरा ग्रुप है अशांत आत्माएं, सबको शांति की किरणें दो। तीसरा ग्रुप है भयभीत आत्माएं, इनको अभय दान दो, ये भी एक दान है, अभय दान, अभय दान भी सर्वश्रेष्ठ दान है, किसी को अभय देना, वो भी साहस बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना। बाबा ने ये भी कहा ना, कोई निर्बल है तो उसको बल दो, किसी को हिम्मत दो, अनुभूतियों से कि इतना अनुभूतियों का खजाने से तुम भरपूर होने चाहिए, ये भी एक शब्द है उसी में, अनुभूतियों के खजाने से भरपूर है वही दे सकते, दूसरे नहीं दे सकते। दूसरा उसके बाद सभी रोगी आत्माएं, संसार के सभी रोगी आत्माएं, बाबा ने कहा ना उस दिन हॉस्पिटल, इसको क्या स्वर्ग कहेंगे, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, एक बॉम्ब फूटा अब तक भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, हिरोशिमा नागासाकी को भी याद किया ना उस दिन, एक बॉम्ब फूटा अभी तक 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 80,000 लोग 80 to 90,000 लगभग, वो तो आंकड़े है, एक ही बॉम्ब, पहला बॉम्ब हिरोशिमा,
छोटा बॉम्ब,
उसको नाम था लिटिल बॉय, उस बॉम्ब का नाम था
लिटिल बॉय,
6 अगस्त, 9 अगस्त को दूसरा बॉम्ब, उसका नाम था फैट मैन, बॉम्ब का नाम नागासाकी, तब भी जापान सरेंडर, बाद में 14 तारीख को सरेंडर हुआ, तब तक उसने बोला मैं नहीं सरेंडर करता हूँ, तो बाबा ने उसको भी याद किया उस दिन। तो ये तो होगा, तो रोगी आत्माओं को सकाश,
दुखी
और लास्ट विकारी, दुखी अशांत भयभीत रोगी और लास्ट में विकारी,
तड़पती बटकती,
वो भी एक छठवां ग्रुप, एक है विकारी मतलब काम विकार में जो है
जल रही है,
काम विकार में अग्नि है वो, उसमें जल रही है, तड़प रही है आत्माएं, उनके अंदर पवित्र बनने के संकल्प उत्पन्न हो जाए हमारे वाइब्रेशन, उस जीवन से निकलकर सभी वेश्या गणिका है, जितने भी तुम्हारे फिल्म स्टार और वो सारे सब उसमें आ जाएंगे, सब विकारी आत्माएं हैं, उनको पवित्र तब बनने के उनके अंदर में संकल्प आए, उनको पता चले कि ब्रह्मचर्य से क्या क्या होता है, वो उनमें संकल्प है, और लास्ट में फिर है भटकती तड़पती भूत प्रेत, उसमें थोड़ा वो लास्ट में रखो क्योंकि वो घुस जाएगी नहीं तो, शक्तिशाली बन जाओ पहले बहुत, उसके बाद ही उनको सकाश देना, नहीं तो बोलेंगे इनसे बहुत सकाश आ रही है घुसो। चलो इनके अंदर
नहीं पहले से बोलने भाई गुजरा ना तुम साल हम देंगे नहीं आपको
तो उनको देना है तो दो नहीं तो नहीं दो छोड़ दो उनको भटकती आत्मा ये शब्द यूज कर सकते हैं भटकती आत्माओं को ठिकाने देने का स्थान ये भी मधुबन की एक महिमा है भटकती आत्माओं को ठिकाने देने का स्थान तो उनको भी सकार दो भूत प्रेत शब्द मत लाना
भटकती आत्मा
भटकती ठीक है शब्द प्रयोग के लिए
ठीक है मतलब क्या था मैं एक बार मैं ऐसा किया था विश्वभर में रहते सोते सोते मैं सोचा कि शमशान घाट गया था ब्रेक करके उधर सोचा वहां जाके अभी सब काम दिया था और थोड़ा सा मैं जैसे कि वहां देने जैसे किया ना जैसे घबराहट हो गया बात मत
पहले ये पांच ग्रुप ठीक है छठवां ग्रुप ऑप्शनल
मैं जैसे सीधा ही वहां ही चला गया ऐसे फील हुआ निकल जैसे मैं अकेला शमशान रात को शमशान में पहुंच गया ऐसे भाई भया लग गया मैं उठ के बैठ गया था
दान भी कई प्रकार के
यही आगे
थी अच्छा बाबा के सामने भी तो कितनी बार आती
नहीं, वो नहीं
वो दूसरा
यहाँ बैठी थी वो बहन माता देवधारी माता जैसे ही वो बात कर रहे थे मैंने उसको दृष्टि दी वो छुट्टी वो एकदम आई उसने ये ऐसे उठा के भेजा वो पत्नी थी माता थी मरियम ये उठा के फेंक दिया महाराजा और आंतम बोली तुम्हारा बाबा कुछ नहीं कर सकता
तो मुस्लिम
और जब आई तो ऐसे लगा कि कुछ हवा जैसे आ रही है कुछ ना लगा
असली प्रैक्टिकल मजा तो होगा
तो ऐसी आत्माएं संसार में तो बहुत है अब उनको भी शांत करना है तो इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं भटकती आत्माओं भूत प्रेत नहीं बोलो भटकती आत्माओं को ठिकाना मिल रहा है और एक ग्रुप है
हमारे
अज्ञानियों का
इस प्रकार से वो भी हमारे भाई है
रहम
हो जो भूत ये शब्द
शब्द विरोध नहीं करे भटकती आत्मा को इविल भी नहीं कहो भटकती बोलो ना बस सम्मान दो ना थोड़ा
समझ जाएंगे हमें दे रहे
बस
वो तो जहाँ हिसाब किताब होगा वहाँ तो घुसे रहेंगे
रहे संसार की वो ब्राह्मण आत्मा है जो अभी तक नहीं आई ज्ञान में
सबसे इम्पोर्टेंट
है जो ब्राह्मण आत्मा है अभी तक ज्ञान में नहीं आई है उनको आह्वान करो कि हे देव कुल की महान आत्माओं क्या करो आ जाओ इधर
समय हो गया है
समय हो गया है अब नहीं तो कब नहीं आ जाओ अब नहीं तो कब नहीं यहाँ आ जाओ तुम्हारा बाप आया है तुमको बुला रहा है आ जाओ
परम पिता परमात्मा तुम्हें बुला रहा है
इसके लिए रोज अमृत वेले शांति वन और ज्ञान सरोवर यहाँ हमारी सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ रोज नए नए ग्रुप्स आते हैं नई नई आत्माएं आती है एक बार शांति वन के ऊपर जाकर सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें देना है
यहाँ तो डेली आती है
यहाँ वहाँ मतलब अभी ये तो भट्टी ये तो ज्ञानी है ना कॉन्फ्रेंस हो गया तुम्हारे हाँ वो तो है इसके लिए हमारे जो मधुबन के जो अंग है अष्टभुजा है जो भी है सारे इन सबको रोज एक बार सकाश कर देनी जरूरी है शांतिवन से चालू करके सब आत्माओं को जितनी है वहाँ रहने वाली वहाँ आने वाली ज्ञानी अज्ञानी सारी आत्माओं को विज्ञानी कम है विज्ञानी सब आत्माओं को सकाश यहाँ सकाश वहाँ सकाश संसार की सब आत्माओं को सकाश सारे सेंटर्स को सकाश विघ्न रहित बनाना है ना सेंटर्स को
कमजोर मना हमारे ब्राह्मण
तो अपने फरिश्ता रूप धारण करो और ऐसे सोचो कि ये फरिश्ता की अब हजारों फरिश्ते बन गए हैं मेरे अभी जितनी सेंटर्स है उसकी एक एक संधि पर मैं जाके बैठा हूँ
सब जगह
सारे सेंटर्स में एक साथ हर सेंटर की हर संगली पर मैं और संकल्प करो मैं सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मेरे सामने बहने और पीछे भाई बहने पहले तो सेंटर की बहने और उसके पीछे सारे माताएं कुमारी कुमार सब 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 और संकल्प करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ विघ्न विनाशक आत्मा हूँ इन सबको पवित्रता की कृपा देनी है।
परम पवित्र
सब मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता का अवतार हूँ, पवित्रता का देवता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। इस संसार को तुम्हारे प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि संसार वालों के दुख ऐसे हैं कि वो सॉल्व नहीं किए जा सकते, केवल हमारी और हमारी और हमारी ही प्रकाश से उनके दुख दूर होंगे। हमारे एक डॉक्टर साहब है, मुंबई बीएसएस में काम करते हैं, एक ही बेटा तो लंदन में डेंटर हो गया, डेंटिस्ट बन गया। एक रात अचानक फोन आया, उसका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल लेके गए, डेथ ऑन द स्पॉट डेथ। अभी सीधा सुना कि गया, वो माँ बाप दोनों शॉक, ऐसा सदमा बोलने का कुछ क्या बोले, कौन उनको समझाए, एकदम टोटल शॉक में चले गए कई दिनों तक। अब ऐसी आत्माओं को शब्दों द्वारा क्या ज्ञान सुनाओगे, बाप का परिचय दोगे, क्या दोगे, कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। उनके लिए तो उनके दुख ऐसे हैं कि यहाँ बैठकर ही प्रकाश दिन
नहीं जाके।
किसी सन्यासी को जो हिमालय पर तपस्या कर रहा था, एक विदेश का व्यक्ति आया, कहा कि तुम हमारे देश में चलो, इतना प्रसिद्ध हो जाओगे और इतनी सेवा होगी तुम्हारे द्वारा। तो हिमालय पर बैठा वो तपस्वी कहता है, मैं यहाँ बैठकर जो तुम्हारे देश की सेवा कर रहा हूँ ना, वो वहां बैठ के नहीं कर सकता। एक ही स्थान पर बैठकर सारे विश्व की सेवा करनी, और वो भी इस स्थान पर बैठकर जो कि लाइट हाउस है।
बाबा ने की ना,
बाबा कहीं गए विदेश, गए सभी गए ऑस्ट्रेलिया, कहीं गए, फिर सुना किसी ने, वो कौन से भाई है, नहीं अभी जो उन्होंने अनुभव सुनाया था, दो क्लासेस जब ना, उन्होंने एक बार उनके क्लास में कही थी कि बाबा तो यहाँ से उधर तक भी नहीं गए, ये जो बाबा पहाड़ी है वहाँ, उधर जब थे तब जाते थे सब जगह, ब्रिज को, यहाँ जब आए तब एक ही बार मुंबई गए, कहीं गए नहीं। हाँ मतलब बस वो एक ही बार जो गए, जो कुछ है वो यहीं बैठ के सर्वश्रेष्ठ तपस्या एक स्थान पर बैठकर विश्व में पूरा फैलाओ, पर उसके लिए ऐसा डायनामो स्पिरिचुअल जायंट माइट बनना पड़ेगा, ज्ञान से भरपूर मालामाल संपन्न संपन्न मूर्ति बननी पड़ेगी, अनुभूति संपन्न बनना पड़ेगा, तो होगा। तो ये मुरली यहाँ पूरी हुई, अभी आ जाओ दादियों से मुलाकात, महारथियों से मुलाकात। क्या बोला तीसरा, बाबा को महारथियों को देख हर्ष होता है, क्यों, क्योंकि समान है, बाप के समान है, इसको इसके लिए बाबा को उनको देख हर्ष होता है।
सभी को
बाबा ने तख्त की बात कही, कौन सा तख्त, सेवा का तख्त, दिल तक तो है ही, पर यहाँ पर विशेष आत्मा है, रहस्य है, बाबा ने कहा राज है, ये कुछ ही आत्माओं को प्राप्त है सेवा का तख्त, और ये सेवा का तख्त पर जो है उनके लिए मुश्किल सेकंड में सहज, ये बाप का तख्त है, इसके लिए बोझ नहीं, और क्या है, ये जादू समाया हुआ है इस तख्त में। कितनी अच्छी बात बोली, सेवा का जो तख्त है उसमें जादू समाया हुआ है, इस तख्त को आदि अनादि वरदान प्राप्त है, कौन सा, सफलता का, सफलता का वरदान, सर्वश्रेष्ठ तख्त है और सफलता का वरदान प्राप्त है। तो जो भी जिसको भी सेवा है वहां पर क्या है, तख्त है, तो उसको, क्योंकि वो बाप का तख्त है, तो दादियों से बातें कर रहे बाबा, महारथियों से बातें कर रहे हैं ऊंची, तो वो बात बोलिए वहां पर तख्त के बारे में। अभी आ जाओ मुरली पर, वक्त की पुकार, क्या कहा, कौन किसको देख रहा है, कौन किसको मिल रहा है, ऊंचे से ऊंचे बाप की, कैसी हम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है, ऊंचे से ऊंचे बाप की, तो जैसे बाप समर्थ है वैसे तुम भी समर्थ हो, बाबा पूछ रहे क्वेश्चन मार्क, प्रश्न अव्यक्त वाणी चालू होती है प्रश्नों से, ऐसे ऐसे हो तुम, हो तुम, हो तुम, हो तुम, हो
स्वीकार करने की बात है, स्वीकार से नहीं है ना, स्वीकार करने, हाँ हूँ।
फरिश्ता बनने की विधि है, फरिश्ता बनना नहीं है, मैं फरिश्ता हूँ, ये विधि है। फरिश्ता बनना है। जो भी बनना है वो ये नहीं सोचो कि मुझे बनना है, मैं हूं, तो वो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, स्वीकार कर लेगा सबकॉन्शियस माइंड। आगे क्या बोला? बाबा ने कहा कि
समर्थ और
व्यर्थ, समर्थ और व्यर्थ, समय प्रमाण, समय के चैलेंज प्रमाण, व्यर्थ का खाता कितना है? तो व्यर्थ का खाता नाम मात्र हो, जैसा उदाहरण दिया जैसा कि आटे में नमक, और समर्थ का खाता 99% है। हाँ, 1% छूट दी है, वही रखा ना, नाम मात्र। ऐसी आत्माएं होगी तो ही आदिकाल में आ सकेगी। आदिकाल में आना है, मध्यकाल में आना है कि त्रेता के आदिकाल में आना है, पूछा ना प्रश्न। तो कौन आ सकती है आदिकाल में? सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जिनका व्यर्थ का खाता नाम मात्र है, या फिर आटे में नमक मिसल है, और समर्थ 99% है।
एक और बोला, जबकि तुमने खुद ही एवरेडी वर्तमान समय प्रमाण, तुम खुद ही एवरेडी
स्थिति समर्थ
आगे है,
उस समय की बात है ना, 76 में होने वाला था, सोच रहे थे कि हम बन गए,
नहीं नहीं है इसी में, आगे आगे इस पैराग्राफ में नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ नाम मात्र हो, तो बाबा ने चेकिंग करने को कहा है, किसकी चेकिंग करो? व्यर्थ कितना, समर्थ
आगे नहीं, पहले ही है ये, उससे पहले
उसके भी पहले और एक चीज बोली कि वो आपका राज्य, भविष्य का राज्य क्या कर रहा है? आह्वान कर रहा है। किन का आह्वान कर रहा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, ऐसी आत्माओं का आह्वान कर रहा है। तो 16 कला संपन्न और सर्वगुण संपन्न वहाँ नहीं बनना है, यहाँ जीवन मुक्ति वहाँ की नहीं, यहाँ की। 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है, वहाँ नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। और एक मुरली में,
हाँ
वहाँ तो पता ही नहीं। तो एक मुरली में और एक बात बाबा ने कहा था, ये जो 16 कला है उसमें एक कला, ये खुद कला तुम में होनी चाहिए। 16 कलाओं में से 94 की एक मुरली अव्यक्त महावाक्य पार्टी से मुलाकात, पार्टी नंबर 2 से मुलाकात। बाबा कह रहे हैं कि माया किसी व्यक्ति के रूप में आएगी, क्या बनकर आएगी? समस्या, विघ्न, समस्या बनकर आएगी। माया व्यक्ति के रूप में समस्या, विघ्न, परिस्थिति, विघ्न बनकर आएगी, उस समय उस व्यक्ति को निर्दोष समझना, ये कला आनी चाहिए। तो फिर 16 कलाओं में से ये कला आनी चाहिए। अगर ये कला नहीं तो 16 कला संपूर्ण नहीं बनेंगे। मतलब हरेक को निर्दोष देखना, किसी का कोई दोष नहीं। इस ड्रामा के सभी एक्टर
बहुत अच्छे हैं,
बहुत अच्छे, निर्दोष है, केवल निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष, थोड़ी भी गलती नहीं है उनकी।
इसीलिए बाबा इशारा दिया क्योंकि ये 16 नंबर कला,
ये है 16th कला, सेलेस्टियल डिग्री, ये कला होगी तो ही 16 कला बनेंगे।
तो परिवार है ना,
वो भविष्य राज्य किसका आह्वान कर रहा है? 16 कला संपूर्ण संपन्न आत्माओं का भविष्य राज्य आह्वान कर रहा है अभी। फिर समय को देखो, समय और संकल्प, वर्तमान समय प्रमाण, समय और संकल्प अधिकार में हो, यह है सेकंड कैटेगरी क्राइटेरिया। आदिकाल में कौन कौन आ सकते? सबसे पहला कौन? कि जिनका व्यर्थ नाम मात्र है और जो समर्थ 99% है, ये। दूसरा, समय और संकल्प पर जिनका
अधिकार
हो, वो आत्मा है।
समय संकल्प
पर अधिकार, चेक करो। बाबा ने कहा व्यर्थ कितना, समर्थ कितना, वर्तमान समय प्रमाण, तुम्हारी समर्थ स्थिति होनी चाहिए। यह था सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड और एक तीसरी बात है जो कि आदिकाल में आ सकते, माता जी कौन सी बोलो? और एक बात है, सेकंड पैराग्राफ चालू होता है वहां से, स्व पर राज्य और विश्व पर राज्य। अगर स्व पर राज्य नहीं तो विश्व पर राज्य नहीं, अगर स्व पर राज्य नहीं तो आदिकाल में नहीं आ सकते। तो तीन बातें हो गई,
मध्यकाल,
फिर मध्यकाल में आओ या त्रेता के आदिकाल में आओ, वो तो प्रश्न पूछा, तो वही। तो व्यर्थ नाम मात्र, ना के बराबर, जैसे कि समाप्त हो चुका है, जैसे इंटरेस्ट ही नहीं है व्यर्थ में कुछ, जैसे हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। सूरज भाई बोल रहे थे उस दिन क्लास में, जैसे ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर किसी लिटरेचर वालों को पूछो कि भाई धोबी घाट में वो जो सोप है उसको कौन सी सोप अच्छी है, तो वो क्या बताएगा? वो बोलेगा मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मुझे क्या पता इसके बारे में। अगर मुझे कोई पूछे ज्योग्राफी में धरती का ये बताओ थोड़ा, तो मैं कहूँगा मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है, इतिहास तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। तो व्यर्थ हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, व्यर्थ नाम मात्र
हमारे समय संकल्प हमारे डिस्कशन में किसने डाल दिए
इंजीनियरिंग की बातें डिस्कस करने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। ज्योमेट्री ज्योग्राफी है क्या, हमको पता ही नहीं क्या
है। किसी ने बाबा रखा ये समझ लीजिए
कि ये व्यर्थ है। तो समय और संकल्प दोनों को समर्थ बनाना है, दोनों की चेकिंग करनी है, फिर अंतर्मुखी बन स्वचेकिंग, स्वचिंतन में रहो, अंतर्मुखी बन स्वचिंतन में रहो। क्या क्या चेकिंग? हाँ, तो ज्ञान का मनन जैसा है वैसा अभी चेकिंग, चेकिंग में भी अटेंशन, तो दोनों चीजें साथ साथ, मनन के साथ साथ चेकिंग, स्वस्थिति की चेकिंग, उसमें देखो कि सारे दिन भर, बाबा ने कहा ना सारे दिन भर तुम्हारी क्या स्टेज है, इससे तुम खुद ही बता सकते हो कि तुम कहाँ होगे, आदिकाल में, मध्यकाल में या त्रेता के आदिकाल में, खुद दे दिया। फिर पूछा, फिर बोला कि सारे दिन भर देखो और अपने पुरुषार्थ के बारे में कहा संतुष्ट हो, जो स्वयं संतुष्ट नहीं है वो विश्व की आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकेंगे, जो ऐसी आत्मा ही विश्व की आत्माओं का सत्कार पाएगी, ये भी एक बात बोली है उसने, जो ऐसी आत्मा है आदिकाल में आने वाली वही विश्व की आत्माओं का सत्कार पाएगी। और वहां तो केवल आत्माएं संतुष्ट नहीं, प्रकृति भी संतुष्ट है, क्योंकि संपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण ये यहाँ पूरा हुआ। फिर उसके बाद में उसके बाद में सेवा के लिए कहा बाबा ने, सेवा में उमंग है, मेहनत भी कर रहे हो, उत्साह भी अच्छा है, पर स्व के साथ साथ विश्व की, स्वयं के प्रति भी रहम दिल और विश्व के प्रति भी रहम दिल, दोनों के प्रति रहम दिल। और भी कुछ है? हाँ, फिर हाँ समय का इंटर, हाँ ये एक पॉइंट नहीं, पहले मैं पहली वो एक रह गया। तो अभी जैसे दूसरों को कहते हो पहली मैं कौन, व्हाट एम आई, ये पहली इंग्लिश बोली बाबा ने, बीच बीच में बोलते रहता है, और माताएं भी बहुत सीख गई है बाबा को सुन सुन कर। तो व्हाट एम आई, तो अभी इसको अपनी श्रेष्ठ पोजीशन प्रमाण, श्रेष्ठ स्थिति प्रमाण, अभी ये स्वयं से पूछो कि मैं कौन, ये पहली कहेगी। और लास्ट में बोला कि जैसे दुनिया एवर रेडी, अभी ये पॉइंट अभी देखो, जैसे दुनिया को कहते हो अब नहीं तो कब नहीं,
वो पहले ही है, वो पहले ही है, जैसे समर्थ है बात समर्थ में, वर्तमान समय प्रमाण, जबकि आप सभी पहले से इसमें के चैलेंज प्रमाण,
चैलेंज
एवरेडी हो तो इसमें प्रमाण अब का
एक एवर रेडी पर वरदान भी था, कौन सा सीमन भाई एवर रेडी पे वरदान था, एक
एवर रेडी के
हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ये समझना, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, वो है एवर रेडी, और वो ही है तीव्र पुरुषार्थी, निर्मोही, निर्व्यर्थ, निरसंकल्प, कार्य रहा हुआ है फिर भी, कुछ कार्य रहा हुआ है फिर भी उपराम, निर्विकल्प, निर्विकारी, निर्विकारी नहीं, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, निरसंकल्प,
इसको स्पष्ट कीजिए, निर्मोही, निर्व्यर्थ,
निर्व्यर्थ, व्यर्थ से मुक्त, निर्मोही, निर्मोही अर्थात
कोई पांच तत्वों का
मोह, इस देह से भी मोह नहीं, सबसे बड़ा मोह तो इस देह का है, इस देह से भी मोह नहीं, कोई भी पदार्थ यदि इस कर्मेंद्रियों को विचलित करता है तो न्यारे नहीं कहेंगे, ये दूसरा वरदान था। तो कर्मेंद्रिया विचलित ना हो कोई भी पदार्थ से, कोई भी पदार्थ में अपने में, अच्छा, दूसरों में, वैभव में, किसी में भी लगाव नहीं, ना एक पाव इधर भी नहीं, एक पाव उधर भी नहीं, तो इधर के ना उधर के लगाव, मोह, आसक्ति। बाबा ने कहा ना साधनों का प्रयोग भी ऐसा करो, योगी बनकर, अनासक्त बनकर, किसी चीज का प्रभाव ना पड़े, तो निर्मोही, कोई भी चीज में मोह नहीं। अगर अभी कहे कि 5 मिनट के बाद 10 बजे बराबर शरीर छूटने वाला है, अंतिम घड़ी है, बस 10-15 मिनट रह गए मनोज भाई, क्या करोगे? ओनली 15 मिनट, 15 मिनट के बाद में
घर चले
बस सन्नाटा हो जाए। बाबा बाबा कहते हैं ना सन्यासी लोग कैसे शरीर छोड़ दे तो सन्यास बस चले जाए, कुछ भी याद ना आए, ना घर फोन करना है कि मैं जाने वाला हूँ, मेरे अकाउंट से एटीएम कार्ड वगैरह सबको किस किस को दे दूँ, कपड़े का क्या करूँ, साड़ियों का क्या करूँ, किसको देनी है कि रखनी है, 15 मिनट ही बाकी है बस, 15 मिनट में शरीर छूटने वाला है, ऐसी तैयारी हो कि अभी भी शरीर छूट जाए तो एवर रेडी। ये है तीव्र पुरुषार्थ, इसको तीव्र पुरुषार्थ का है, हर घड़ी अंतिम, बस अभी जो है छूटा तो भी कुछ नहीं, छूटा तो छूटा कुछ नहीं, कोई संकल्प ही नहीं, ना किसी की याद, मित्र संबंधी कोई नहीं, सब मरे पड़े हैं।
फिर सब आगे देखेंगे इधर भाई, इधर लोग आए थे कहाँ चले गए।
तो अंतिम घड़ी ये है तीव्र पुरुष। तो बाबा ने कहा जैसे दूसरों को सुनाते हो अब नहीं तो कब नहीं, तो स्वयं से पूछो, स्वयं से रूह रियान करो, एवर रेडी है, स्वयं से रूह रियान करो, स्वयं को ही पूछो। तो अभी सुनने का समय सुनाने नहीं आए बाप, देखना चाहते हैं हर एक रत्न को संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। अच्छा जहाँ मुरली पूरी हुई,
थोड़ा सा अगर लगा
हुए
तो नाव में
पैर। चलो एक हफ्ते का बताओ चीमन भाई,
बुद्धि योग निष्फल नहीं जाना चाहिए,
बुद्धि योग निष्फल नहीं जाना चाहिए, हो गया वो बुद्धि हमने। और
हाजरी जैसे
हाजरी, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या बोला, जब घूमने फिरने जाते हो तो
झरमुई
झरमुई बातें नहीं करनी है, नहीं दो होते भी है तो भी शांत, याद में याद की रेस करो, क्या कहा नहीं,
ज्ञान की बातें कब तक करते,
यहाँ ज्ञान की बातें कब तक करते रहोगे, आवाज आवाज अपने को शांत में रख, अपने में शांत आवाज को अपने को शांत में रख, एक दूसरे से याद की रेस करो। तो घूमने जाते हो तो सबसे पहले तो अकेले जाओ, अगर दो लोग जाते हो तो याद और याद की रेस करते हुए जाओ। वो दत्तात्रेय का एक जो 24 गुरु में से एक गुरु एक कन्या है, दत्तात्रेय की 24 गुरु है ना, उसकी एक गुरु है कन्या, वो कन्या क्या करी है, वो धान काट ये करती है, कूटती है, उसके हाथों में इधर चार पांच चूड़िया इधर है, चार पांच चूड़िया इधर है, वो देखता है वो जब कूट रही है तो आवाज आ रहा है झन 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 झन, तो वो करती है एक यहाँ की निकालती है, फिर करती है, फिर आवाज आता है यहाँ की निकालती है, फिर निकालती है, फिर आवाज आता है, फिर एक निकालती है, तो वो देखते रहता है, आखिरी में एक ही चूड़ी इधर बजती है, एक ही चूड़ी इधर बजती है, कोई आवाज नहीं। वो सीखता है कि सन्यासी ने अकेला ही रहना चाहिए। वो उसकी एक गुरु है, उसकी छठवीं या सातवीं गुरु है, 24 गुरुओं में से ये भी कन्या भी उसकी गुरु बन गई। दो लोग हैं मतलब बातें, क्या क्या हुआ तुम्हारे डिपार्टमेंट में, क्या क्या हुआ तुमको पता है, उसको वहां से वहां भेज दिया गया, क्यों भेजा गया, कब भेजा गया, क्या क्या किया था उसने, ये तो पहली बार नहीं, इसके पहले भी बहुत बार भेजा था, इसके पहले कहीं और था,
ऐसे ऐसा चिंतन आ
गया। एक ही दिन के लिए आ गए मधुबन में शांतिवन से और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली और तुमको पूछा, अरे तुमको पता ही नहीं यहाँ रहते हो,
चाय से ज्यादा सुनता
क्या संजय भाई, तुमको यहाँ का पता नहीं, बाजू के डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है,
पहले वाले को बोलते
हैं तुम्हें पता है,
क्या कर रहे हैं डांट
खाता खबर,
तुमको क्या करना है, पर चिंतन का तो कोई उसका कोई ये ही नहीं है, अंत नहीं है उसका, असंख्य विस्तार, व्यर्थ एक व्यर्थ दूसरे व्यर्थ को जन्म देता है। किसने सुना, अच्छा तुमको पता है इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ, अच्छा ये हुआ और क्या क्या हुआ, दूसरा प्रश्न इमीडिएटली होता है और क्या क्या हुआ, और किसी किसके साथ, हाँ वही
आगे नहीं बताना,
इसके लिए हम कौन है, गणेश, गणेश का पेट कैसा है, बड़ा, सब संभाल लेता है वो, हमारा यादगार है गणेश, यहाँ की बात वहाँ नहीं, वहाँ की बात वहाँ नहीं, किसने कोई बात कही अंदर, किसने अच्छा कहा बुरा कहा अंदर, उसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सेंटरों की बात यहाँ, यहाँ की बात सेंटरों में, ये सब व्यर्थ है। परचिंतन पतन की जड़ है। परचिंतन के लिए अभी मैं आशा बहन का क्लास सुना, उसमें तो बहुत जबरदस्त बात कही उन्होंने। प्रकाश मणि दादी क्लास करा रहे थे, सारी बहनें बैठी हुई है, केवल बहनों का क्लास, शायद हिस्ट्री हॉल या कहीं ऊपर। बहनें लिख रही है नोट्स, सारी बहनें लिख रही है। दादी ने क्लास बंद कर दिया, वहां क्या कर रहे हो? तो वहां नोट्स लिख रहे हैं। बोले क्यों लिख रहे हो? सेंटर में जाके सुनाने के लिए। तो बोले ये भी परचिंतन है। यहाँ बुद्धि नहीं है, बुद्धि क्या है, कहाँ पर है? वहां पे ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, ये पॉइंट तो जरूर सुनाऊंगी। अरे तुम स्वरूप बन जाओ तो स्वरूप बनकर जाओ ना। दादी जो सुना रही है, दादी ने खुद ही ऐसे कहा, दादी जो सुना रही है उसका स्वरूप बनो और जाओ। लिखने की क्या जरूरत है? मतलब वो देख ही नहीं रही है, सारी की सारी पूरा लिखने में ही लगी हुई है। सब कुछ 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 होते हैं ना, कुछ कुछ भाई कंटिन्यूस लिखते रहते हैं। ऊपर तो देखते हैं कि बाबा आया हुआ है, कंटिन्यूस लिख रहे हैं। एक भी बार दृष्टि बाबा इधर ड्रिल करा रहा है तो भी लिख रहे हैं।
बदली मिलने वाली है
फिर भी, तो वो भी तो परचिंतन की परिसीमा वो वहां तक है, उसकी डेफिनेशन। और क्या कहा बाबा ने? क्रोध के तीन वर्धन स्लोगन है, लॉ हाथ में लेना ही क्रोध का वर्धन है। क्रोध अग्नि है, खुद को खुद जलते है, दूसरों को जलाती है। तीसरा स्लोगन क्रोध के बारे में, जो मीठे और शांत चित्त जिनका स्वभाव है, क्रोध का भूत उनको वार नहीं करता। तो तीन स्लोगन क्रोध के। और बोलो, 5 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट है।
जिनका स्वभाव मीठा और
शांत चित्त। और विठल भाई
गारंटी दे देगा,
बाबा 100% गारंटी करता है। किसकी?
जो
मुझे याद करेंगे तो
सजा
नहीं खाएंगे, बिना सजा खाए घर में जाएंगे।
बाबा है घर ले,
घर ले जाएंगे।
बाबा घर ले जाने क्या विचार है? विचार है घर चलने का? बाबा पूछ रहे हैं, विचार है घर चलने का कि यही दिल लगानी है? इस दुनिया में क्या रखा है?
एक बाप से दिल लगानी है,
एक बाप से दिल लगाना है, यहाँ एक माशूक से दिल लगानी है, बाकी किसी से दिल नहीं लगानी है। यहाँ बहुत अच्छा समझा, घर गया, स्त्री का चेहरा देखा और माया सब पर लगा देती है, वो हो गया। और भोजन, बाबा ने अपना अनुभव सुनाया, मैं भी भूल जाता हूँ।
हवस की बात थी, लालच की,
शुगर कम करो, खांसी ठीक करो, तो याद में रहता नहीं उन्हें, तो खांसी भी कैसे ठीक होगी?
बच्चे बताते नहीं है
बाप, बच्चे लज्जा आती है बच्चों को बताने के लिए। बाप सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर चलना है, क्या वाक्य था?
कैरेक्टर के ऊपर,
एक कैरेक्टर के ऊपर था। अच्छे कैरेक्टर से, ये दुनिया के कैरेक्टर से एकदम खराब है। इस समय तुम फील करते हो कि दुनिया बहुत गंदी और बाप जो कहते हैं वो ठीक है,
वही सत्य
है। और कैसे माने 5,000 साल की बता? अरे सत्य बाप सुनाते हैं, सत्य ही सुनाएंगे ना।
10,000
हाँ तो भी प्रश्न पूछेंगे, सत्य बाप सत्य ही सुनाते हैं। बकड़े से सबसे बड़ी भूल तो यही है बाप को भूलना। और
बाबा आकर मिलते तो बाप
कैसा? नहीं
मिलते तो बाप
कैसा? और राजकुमार भाई,
अनिल भाई,
हाँ अनिल भाई माल निकालो कुछ,
बहुत खराब
बोलो, कुछ तो बोलो।
अरे माइक से
जोरदार होता है, इधर आएगी तो।
अरे अच्छी अच्छी पॉइंट थी, 5 मिनट है, और बोलो कुछ
बोलिए।
फकीर बनो, तुम फकीर हो, तुम्हारा क्या साहेब से प्यार? तुम साहेब को प्यारे हो? नहीं नहीं, तुम प्यार से प्यार कर, तुम क्या
याद में समाना
साहेब को प्यार करते हो? ऐसे कुछ फकीर, संपूर्ण फकीर बनना है, फिदा होना, संपूर्ण याद में रहना, बैटरी चार्ज करना,
याद में समझ आना होना फकीर।
संतुष्ट बनी, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। और देखो उस मुरली में विरोधाभास है, विरोधाभास लहरें हैं, सागर की लहरें कैसी चलती है। एक जगह बोला मैं बाप आए हैं तुम्हारे निमंत्रण से, دوسرا بولا یہ میرا کلپ کلپ کا پروگرام ہے, میں تمہارے بلاوے سے تھوڑی آیا ہوں, میں تو اپنے ٹائم پر آتا ہوں, تم یہ مت سمجھو کہ میں تمہارے نمنترن سے آیا ہوں. باپ تو یہ تو میرا کلپ کلپ کا پروگرام ہے, اسی مرلی میں آیا. یہ پچھلے ہفتے کا ہے. ارے مایا ہم ایسا کچھ تھا نا, اور مایا بیٹی ہے کبھی بولتے آنکھوں پر قبضہ رکھو, وہ پچھلے ہفتے بولا تھا. تم آدھا قلب کے بھکت ہو, اور کوئی تم سے پوچھے کہ تم شاستر کو مانتے ہو تو کیا کہو گے؟ جو شاستر کو نہ مانے تم سے بھی زیادہ ہم مانتے ہیں. ہم نے ہی شاستر لکھے, ہم نے ہی پڑھے, شاستر کی شروعات بھی تو ہم سے ہی ہوئی ہے. شاستر لکھنے والے کون ہیں؟ ددیچی, اگست, پلست, وشوامتر, ادھر ہی بیٹھے ہیں سارے. یہ سپت رشیوں کی سبھا, سمجھے؟ سارے رشی منی کون ہیں؟ بھرگو, وششٹھ, اتری, سب سب ہم ہی ہیں. اور کیا بولا؟ مرلی سے پیار نہیں تو باپ سے پیار نہیں. مرلی مس نہیں کرنی ہے. اگر مرلی دو تین دن نہیں آتی ہے تو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا ہے, ڈھونڈ کے یہاں وہاں سے ڈھونڈ کے بہانا نہیں دینا. میں تمہارا جو لکھے ہوئے نوٹس ہے وہ پڑھنے کو کہا نا. اور بولو منوج بھائی. ارے ایک منٹ ایک منٹ, کیا 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 کیا
کرنا ہے؟ دوسروں سے بھی کرانا ہے
کیا؟ کرودھ 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 خود بھی کرودھ اگنی ہے, خود بھی جلا جل خود کو بھی جلاتا ہے, دوسروں کو بھی جلاتا ہے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی بھی بات تینوں ہوشیار, جو بدھی پر سارا مدار ہے, گیتا پر سارا مدار ہے. کبھی بولا گیتا پر, کبھی بولا بدھی پر. پرشاد کرنا کرانا, اتم پرشاد کرنا ہے.
پرشاد کرتا ہے دوسروں کو بھی کراتا
ہے.
ہمارا پرشاد ہے پرانی جتی کو ساتھ
نئی جتی. اور انیل بھائی, انیل بھائی,
انیل بھائی کا
ارے مصیبت کھڑا کر دیتی ہے. کچھ بھی اکٹھا نہیں کرو تو تمہارے لیے مصیبت ہو جائے گی.
سنو وہی یاد آیا یج سے سب کچھ ملتا ہے, سب کچھ تھا.
ہاں تم تو یج میں بھرپور ہوتے, تم کو کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں, کچھ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں بھکتی مارگ ہے کنرت, سنیاسیوں نے اپنی میٹھی میٹھی آوازوں میں تم کو شاستر سنائے. کیسے سنائے؟ میٹھی میٹھی آوازوں میں تم کو شاستر سنائے, پر وہ ہے کنرت, بھکتی ہے ہی کنرت. باپ کو یاد کرو, کھانا بناتے ہوئے بھی یاد کرو, کھانا کھاتے ہوئے بھی یاد کرو. ہاں ایشوریہ مت اور منوشیہ مت, مانو مت کہتی ہے ایشور سرو ویپی ہے, ایشوریہ مت کہتی ہے نہیں. کتنا سندر واقعہ ہے, ایشوریہ مت کہتی ہے نہیں. فل سٹاپ. جنم جنمانتر کے پاپ, گھر اور سکھدھام کو یاد کرو. اور تمہارے پر ابھی برہسپتی کی دشا ہے, سارے سنسار پر راہو کی دشا ہے, کیول سنسار پر نہیں بھارت پر ہی نہیں سارے ورلڈ پر راہو کی دشا ہے. کیا چارٹ؟ ہاں اپنا چارٹ دیکھو, کیا چیک کرو باپ, کیا پیار کے ساگر کی سنتان ہے, کسی کو دکھ تو نہیں دیتے, کسی کو ناراض تو نہیں کرتے, اپنا پوتا مل رکھتے ہو, اپنا چارٹ رکھتے ہو, پریم باپ سمان پریم کے ساگر بنے ہیں.
اس کے پہلے پہلے سب تم پریم کے بھرپور گنگا بنو.
وہ بہت پرانا ہو گیا, جب آپ گئے تھے نا تب کی بات ہے, یہاں سے چھٹی میں جانے کے پہلے والی مرلی ہے.
سارا کمپیوٹر میں نوٹ ہے.
آج کا مرلی کا وردان وہ لاسٹ ایکاگرتا کی شکتی سے. بابا نے کہا کہ کسی کے بھی وش نہیں ہونا ہے, اپنے سوبھاؤ کے بھی وش نہیں ہونا ہے. اپنا سوبھاؤ ارتھات سوبھاؤ, سو اور دوسرے آتمک سوبھاؤ میں استھت ہے, یہ ہے سوبھاؤ. आदि अनादि संस्कारों से परवश आत्माओं को नहीं एकाग्रता की शक्ति से
कमजोर स्वभाव के बस नहीं हो
हाँ,
जो है ना
लास्ट लाइन
एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर
सेट कर देती
है।
स्लोगन
ज्ञान
वो वरदान का ही था मधुबन निवासी से जो मुलाकात तो क्या होगा प्रजा और
बैलेंस रखो तो प्रजा और बारिश बनेगी
प्रजा बनेगी बारिश बनेगी और दासियों के लिए भी था ना कि तुम राजा बनना मेहनत का काम है दास दासी तो जन्म निर्माण था दास दासी बनी इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो कि राजा बने
तो आशीष से बात करते हैं
चलो अभी मैं अगले बार के लिए काम देता हूँ हर एक कम से कम 15 से 20 पॉइंट सुनाए हफ्ते भर का और संडे की मुरली का
20 पॉइंट
सुनाए पूरे हफ्ते भर का
यहाँ
अगली क्लास में
15-20 पॉइंट
इधर सुनाए तो नहीं रिपीट होगा हर रिपीट होने तो उसमें क्या हो रहा है पूरा देखो 6 दिन की कल मंडे से लेके तो सैटरडे तक 6 मुरलियां हैं अभी 6 मुरलियों से रोज की मुरली से कुछ पावरफुल पॉइंट पावरफुल ज्ञान वाली धारणा वाली अलग से लिख के रख के उनको याद करना है जैसे बच्चे याद करते हैं ना पहले पहले वैसे करना होता है जैसे छोटे बच्चे पढ़ाई करते ना तो धीरे 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 फिर प्रैक्टिस हो जाती है फिर वो स्वतः ही याद रहेगा तो चिंतन चलेगा याद ही किसको पूछो मुरली क्या थी बहुत अच्छी मुरली थी किस पर थी हवज पर थी और क्या था और कुछ पता ही नहीं क्या था बस वो एक ही पॉइंट याद था कि साड़ी नहीं रखनी है 10-20 और कोई दूसरी पॉइंट थी दूसरी पॉइंट ब्लैंक दूसरी कोई एक ही पॉइंट याद है बस जो प्रश्न उत्तर था उतना ही याद है बाकी सब खिलाफ वोलेटाइल है ज्ञान वोलेटाइल अभी अभी सुना और गया अभी अभी क्लास से सुना और निकले क्लास से बाहर की खलास तुरंत खलास सुनने का ज्यादा ये नहीं होता इसके लिए सबसे पहले उसको पढ़ना पढ़ने के बाद उसके नोट्स निकालना नोट्स निकालने के बाद उसको याद करने की कोशिश करना याद करने के बाद किसको सुनाना तुमको पता है आज की मुरली में क्या स्लोगन था
इतना मेहनत करे
तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना बिना मेहनत करे तुमको मैं ऐसे
बिना मेहनत मिल जाए मक्खन
बाबा क्या कहते हैं मैं तुम 10 आने का क्या 5 आने का 2 आने का मटका लेते हो तो भी ठोक ठोक के देखते हैं मैं तुम्हें विश्व की बादशाही दे रहा हूँ तो क्या ऐसे ही दे दूँ क्या तुमको भी तो मैं ठोक ठोक के देखूंगा कैसे है ज्ञान तुम्हारे रग रग में उस दिन बोला ना टपकते रहना चाहिए नस नस में समा जाए जो भी मिले उसको ज्ञान सुनाओ जो भी मिले उसको मतलब देख कर
जो भी आते ना शिविर में मेहमान जो ड्राइवर मिलेगा वो भी ज्ञान सुनाएगा आने वाला मिलेगा वो भी ज्ञान सुनाएगा
तो पढ़ना फिर केवल सुनने से कुछ नहीं होता है सुना फिर पढ़ा फिर चिंतन किया फिर चिंतन करके सुनाया फिर चिंतन का थोड़ा विस्तार किया और उसको फिर समाया ये सब करो तो याद रहेगा तो कम से कम 10 थी सुशा 10 थी 6 मुरलियों में से 10 पॉइंट संडे के छोड़ के चलो 20 कर दो 20 पॉइंट पावरफुल पर हरे को टिंग 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 पर ऐसा होता है कि जब भी कभी ऐसा दिया जाता है ना अगली क्लास में
कम हो जाते
तो संख्या ही कम हो जाती चलो नहीं भी करके तो भी आना क्योंकि जब भी होमवर्क अगर हो जाए ना तो वो फिर संख्या पता नहीं
दस
मिनट
आपस
कभी कर ली मुसीबत कभी कर दी उसके लिए
क्या पूछ लिया
नहीं 4-5 दिन के बाद ही एक बहन बोलती क्यों पूछ लिया मुसीबत हो गई बिना काम का है पूछ लिया
तो चलो कम से कम 10-15 ठीक है अच्छा ओम शांति एक मिनट योग करके चलते